जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वन चारी यमुना यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्याम सुंदर राधे जय राधा जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताई 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 जय गौरनिताई जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिराज कचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय अनंत कोटि भक्त वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीद्वैत गदाधर शिवा सदि गौर भक्त वृंद की जय श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय वृंदावन मथुरा धाम की जय मायापुर नवद्वीप धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय श्री गंगा माई यमुना माई भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय स्कॉन संस्थापन दिवस की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय श्री श्री गौरनिताई की जय श्री प्रभुपाद की जय सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो गुरु गौरांग की जय जयकार हो श्री प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण आप सब यहाँ हैं ये एक आश्चर्य है कारण यही हो सकता है कि हिंदी समझते हैं या फिर हम पर कृपा करने आए हैं अन्यथा महाराज श्री उधर विराजमान हैं और उनके मुख से सुनना हमारी भी इच्छा थी लेकिन सेवा है तो इधर है साक्षात प्रभुपाद का संग जिन्होंने किया है जब तक हैं दर्शन श्रवण सेवन कर लेना चाहिए भविष्य में तो दुर्लभ ही होगा तो आइए आज के प्रसंग में प्रवेश करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी आज एक और बोलेंगे तदा रजस्तमो भावा तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्चये चेत एतैरनाविद्धम् स्थितं सत्वे प्रसीदति। तो आज का श्लोक है स्कंध 8 अध्याय 10 श्लोक संख्या 41। युद्ध चल रहा है, देवासुर संग्राम। बलिर्महेन्द्रम दशभिस्त्रिभिरैरावृतम शरैः चतुर्भिश्चतुरो वाहनेकेनारोहमार्च्छयत्। बलिर्महेन्द्रम दशभिस्त्रिभिरैरावृतम शरैः चतुर्भिश्चतुरो वाहन एकेनारोहमार्च्छयत्। बलिर्महेन्द्रम दशभिस्त्रिभिरैरावतं शरैः चतुर्भिश्चतुरो वाहन एकेनारोहमार्च्छयत्। बलिर्महेन्द्रम दशभिः चतुर्भिश्चतुरो वाहनम् हरे कृष्ण। बलि महाराज, बलि महाइंद्रम स्वर्ग के राजा, दशभिः दस, त्रिभिः तीन, ऐरावतम इंद्र के वाहन ऐरावत को, शरैः बाणों से, चतुर्भिः चार बाणों से, चतुरः चार, वाहन सवारों को, एकेन एक से, आरोहम चालक को, आर्च्छयत वार किया। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। महाराज बलि ने, बोल सकते हैं, तब दस बाणों से इंद्र पर तथा तीन बाणों से इंद्र के वाहन ऐरावत पर वार किया। उन्होंने चार बाणों से ऐरावत के पांवों की रक्षा करने वाले चार घुड़ सवारों पर आक्रमण किया और एक बाण से हाथी के चालक पर। तात्पर्य, वाहन उन घुड़सवारों का सूचक है जो हाथी के पैरों की रक्षा कर रहे थे। सैन्य व्यवस्था के अनुसार सेनापति को ले जाने वाले हाथी के पांवों की भी रक्षा की जाती थी। तो ये युद्ध की रणनीति है, किस प्रकार से युद्ध किया जाता है, किसकी कौन रक्षा करेगा। जैसे कि शतरंज, युद्ध में जो नहीं गए वो शतरंज खेले होंगे, तो शतरंज में राजा होता है, मंत्री होता है, घोड़ा होता है, हाथी होता है, सिपाही होते हैं, तो सिक्योर करके चलते हैं उसमें, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं सब जुड़े हुए, ताकि एक को कोई लुढ़काए तो दूसरा उसको लुढ़का दे। ऐसा ही उसी को देख के बनाया गया है। तो कहते हैं आचार्य, एवं सामान्य तो युद्धम निरूप्य, सामान्य रूप से युद्ध का निरूपण किया, पीछे आपने सब सुना ही, विशेषतश्च तन निरूपयति। अब विशेष रूप से निरूपण कर रहे हैं बलि इत्यादि ना, ये जो बलि वाला श्लोक है जो हमने पढ़ा, बलिर दशभिः शरैर, तो इसको आपने अभी देखा ही, ये विशेष वर्णन है। अब ये नायकों में युद्ध हो रहा है, देवताओं के नायक इंद्र और असुरों के नायक बलि महाराज। तो इस प्रकार से, किस प्रकार से बलि महाराज ने, कितनी कुशलता से बलि महाराज ने इंद्र को 10 बाणों से मारा है, 3 बाण ऐरावत हाथी को लगे, 4 बाण ऐरावत के पैरों की रक्षा कर रहे 4 घुड़सवारों को, घोड़ों को मारा तो घुड़सवार भी गए, और 1 बाण उस सवार पर जो महावत बैठा है हाथी पर, उसको जाकर के लगा। इतनी कुशलता से उन्होंने वार किया। तो ये देव और असुरों का संग्राम कहते हैं कि पहले अलग अलग ग्रहों में थे, फिर उसके बाद युग बदला तो एक ही ग्रह पर आए, जैसे कि रावण आदि हैं, एक ग्रह पर थोड़ा दूरी दूरी में, फिर और निकट आ गए देव और असुर, और एक ही परिवार में आ गए कौरव पांडव, 2 विपरीत मनोवृत्तियां, और अब एक ही अंतःकरण में कलयुग में इन 2 मनोवृत्तियों का हम दर्शन कर सकते हैं। हमारे मन में हमेशा अच्छी बातें आए, ये कलयुग में अत्यंत कठिन है। ये तो केवल मल का मूल है, कलेर दोष निधे राजन, और इसमें जैसे मछली जल में जीवन होता है उसका, इसी प्रकार से हमारा चित्त भी विषयों में बड़ी सहजता से गमन करता है। वातावरण चारों तरफ विषयों का है, सहजता से उसमें गमन करता है, उसमें गमन कर रहा है, अर्थात विषयानिवेश, विषयाभिनिवेश है हमारा, इसलिए हम कलिकाल के जीव दोनों स्थितियों का अनुभव करते हैं। एक स्थिति स्वाभाविक विषयानुरागिणी, और दूसरी है श्री प्रभुपाद जी जैसे भगवान के सेनापति, भगवान के भक्त, भगवान के मैसेंजर, उनकी कृपा की साक्षात मूर्ति जब आते हैं इस धराधाम पर, तो आ करके और उस आसुरी वृत्ति का नाश करते हैं। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि अगर असुरता को नाश ना करके असुरों को नाश करें तो फिर कोई बचेगा ही नहीं, सारी सृष्टि में लगभग लगभग असुर ही विराजमान है। तो इस अंतःकरण में 2 वृत्तियां चलती हैं, कभी अच्छी कभी बुरी, कभी शुभ कभी अशुभ, कभी भोग की वासना अधिक, थोड़ी बहुत सेवा वासना, भगवान के प्रति सेवा की इच्छा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज स्कॉन का लीगली आधिकारिक रूप से स्थापना दिवस भी है, तो वो भी उसका उद्देश्य यहीं से जा रहा है। यद्यपि इंद्र देव हैं, भगवान के भक्त हैं, लेकिन शुद्ध भक्तों में उनकी गणना आती है नहीं आती है। आप सब कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं। और बलि महाराज तो 12 महाजनों में से एक हैं, बलिर्वैया से किर वयम, तो अब इनको आसुरी श्रेणी में रखें कहां रखें बताइए, अब कोई उत्तर नहीं है जी। कुल आसुरी है, बहुत सुंदर, वास्तव में असुर नहीं है। तो प्रभुपाद जी से प्रश्न किया था बलि महाराज के विषय में, तो वहां वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी, कहते हैं सो व्हेन शुक्राचार्य एडवाइज्ड बलि महाराज अगेंस्ट विष्णु, शुक्राचार्य एट वंस बिकम अनक्वालिफाइड एज अ स्पिरिचुअल मास्टर। जैसे ही शुक्राचार्य, कथा तो सबको पता ही है, शुक्राचार्य ने जैसे ही कहा कि तुम भगी एश वही, ये साक्षात निश्चित रूप से विष्णु ही है, भगवान विष्णु और अव्ययः, इनको तुम मत दो, जैसे ही कहा अगेंस्ट विष्णु हो गए, तो शुक्राचार्य एट वंस उसी समय तुरंत बिकम अनक्वालिफाइड, अयोग्य हो गए, किस पद के, एज अ स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु के पद से अनुपयुक्त हो गए। बलि महाराज डिसओबेड सच एन अनक्वालिफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, बलि महाराज ने ऐसे अयोग्य गुरु को त्याग दिया, यद्यपि इनके कुल में चलते आ रहे हैं, ये कुल गुरु हैं, एंड देयरफॉर ही इज एक्सेप्टेड एज महाजन, इसलिए उनको एक महाजन के रूप में स्वीकार किया गया। तो यहां से उनकी महाजन की हिस्ट्री शुरू होती है। महाजन मीन्स अ पर्सनैलिटी हूज फुटप्रिंट्स शुड बी फॉलोड, जिनके चरण चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए या किया जाता है। महाजनो येन गतः सपंथाः, तो जो पंथ दिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, कि ऐसा गुरु जो भले ही शुक्र से आ रहा हो, यानी वंश परंपरा से आ रहा हो, किंतु यदि वह सिद्धांतों का विरोध करता है, सही सिद्धांत नहीं देता, तो उसका अभिप्राय ये नहीं है कि हम उस गुरु को स्वीकार करके रहें और उसके अनुगत्य में रहें, उसकी बात माने, क्योंकि वह मूल धारा से हट चुका है। तो सो ही इज एग्जाम्पलरी बिहेवियर इन रिजेक्टिंग अ नॉन वैष्णव स्पिरिचुअल मास्टर इज आइडियल एंड ही इज कंसिडर्ड अ महाजन। तो उन्होंने एक आदर्श उपस्थित किया कि प्रामाणिक वैष्णव, अवैष्णव जो होता है वो गुरु नहीं हो सकता, हर वैष्णव स्वपचो गुरु। वैष्णव यदि चांडाल कुल में भी उत्पन्न हुआ है लेकिन आचरण उसका अच्छा है, वैदिक नियमों का पालन करता है, भक्तों के संग में आकर के, और वो बिल्कुल धारा के अनुसार चल रहा है, तो वह किसी भी कुल में हो, कीवा विप्र कीवा न्यासी शूद्र के निनोए, जय कृष्ण तत्ववेत्ता शयी गुरु होए, तो कुछ भी हो, अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपचो गुरु हो। तो इस बात को स्थापित किया, और स्कॉन में ये बात ही स्वीकार की जाती है जैसा कि हम सब जानते हैं, और उसका विरोध बाहर होता है, लेकिन प्रमाण हमारे सामने है, बलि महाराज भागवत इस बात का प्रमाण है। अब त्यागने का अर्थ ये है कि उनकी बात नहीं मानी, जैसे पिता को किसने त्यागा था, इसी कुल में प्रहलाद महाराज ने, पिता की बात नहीं मानी, तो हम बंधन में नहीं हैं कि अगर कोई शास्त्र विरुद्ध बात करता है, किसी कारणवश किसी स्वार्थ से बात करता है, तो हम उसको ऐसे ही स्वीकारें, हमें शास्त्र की बात स्वीकारनी है। इसलिए तीन चीजें हैं, गुरु साधु और शास्त्र, इन तीनों को मिला के चलना होता है। तो अब शास्त्र बहुत सारे हैं, शास्त्र बहुत सारे हैं, और भ्रमावहई ही पद्म पुराण में कहते हैं, भ्रम उत्पन्न करते हैं एक साधारण व्यक्ति के चित्त में, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। इसलिए यद्यपि व्यास देव ने सबका सार वेदांत सूत्र और उसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में कर दी है, और इतिहास में उस वेद के सार को सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन के अनुसार भगवत गीता में उस सिद्धांत को दे दिया है, किंतु फिर भी भ्रम रहता है, तो उसको और स्पष्ट करने के लिए भगवान के कोई प्यारे भक्त इस धराधाम पर आते हैं, जैसे कि श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद जी के बारे में आप सब जानते ही हैं, क्योंकि श्री प्रभुपाद जी ही इस इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, और आज के दिन ही प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की थी ऑफिशियल रूप से। प्रभुपाद जी हंसी में भी कहते थे इस्कॉन नाम अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो किसी ने सजेस्ट किया गॉड कॉन्शियसनेस, सब लोग आ जाएंगे, तो प्रभुपाद जी कहते हैं फिर बहुत सारे वो अपने अपने देवता भी ले आएंगे साथ में, बोले ये भी भगवान ये भी भगवान, फिर लड़ाइयां शुरू होंगी। इसलिए क्लियर रखना चाहिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्रीमद् भागवत प्रमाणित करती है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और उन कृष्ण के अंतर्गत श्री राम भी हैं, वही तो हैं राम आदि मूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन नाना अवतारम करो भुवनेशु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत। कृष्ण तो स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जो सोचते हैं कि इस्कॉन वाले जो हैं ये हरे कृष्णा ही करते हैं, कृष्ण कृष्ण को ही बस मानते हैं, इनकी तो कहीं श्रद्धा नहीं, ऐसा नहीं है। रूपा जी कई बार क्लियर किए हैं कृष्ण के अंतर्गत राम जी भी हैं, नृसिंह भी हैं, कूर्म भी हैं, वराह भी हैं, सारे विष्णु तत्व आ जाते हैं और देवता भी आ जाते हैं, लेकिन भगवान के रूप में नहीं, उनके अंश के रूप में, अंग के रूप में। भगवान के अंग स्वरूप हैं देवता। तो अगर किसी को देवोपासना भी करने की इच्छा है तो अलग से मत करो, कृष्ण की उपासना में सबकी उपासना निहित है। अन्यथा यजन्त्य विधि पूर्वकम्, अविधि पूर्वक यजन कर रहे हैं। तो ये सब बातें स्थापना करते समय प्रभुपाद जी ने मस्तिष्क में रखते हुए और स्कॉन की स्थापना की, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के कुछ उद्देश्य हमें प्रदान किए हैं। पहला है संपूर्ण मानव समाज में सुव्यवस्थित रूप से आध्यात्मिक ज्ञान का व्यापकता से प्रचार प्रसार और सभी को आध्यात्मिक जीवन शैली से प्रशिक्षित जीवन शैली में प्रशिक्षित करना, जिससे उन्हें अपने जीवन मूल्यों के असंतुलन की जानकारी हो सके, ताकि विश्व में वास्तविक एकता और शांति स्थापित हो सके, कुल मिलाकर के बिगड़े हुए को संवारना सुधारना। अब कोई व्यक्ति रोगी हो और उसको रोग का पता ही नहीं है तो इलाज कैसे करवाएगा, वो जाएगा ही नहीं डॉक्टर के पास। तो प्रभुपाद जी यहां कह रहे हैं, मतलब इस उद्देश्य में दिया गया है कि उनको बताना कि वास्तव में तुम सब रोगी हो, अपने जीवन मूल्यों के असंतुलन की जानकारी हो। तो सबसे पहले अवेयरनेस, एक चेतना जागृत करना कि आप सब किस कंडीशन में हैं, हम सब किस कंडीशन में हैं। सबसे पहले अपनी स्थिति पता हो, भाई जीपीएस लगाते हैं कि कहाँ जाना है, तो पहले तो लोकेशन सेट करनी होती किधर हैं अपन लोग, तब तो जाएंगे कहीं, और लोकेशन सेट नहीं करो तो फिर तो कुछ बता ही नहीं पाएगा, भाई तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं, पहले दिमाग ठीक करो, अर्थ यही होता है। तो सर्वप्रथम प्रचार करने का उद्देश्य सबसे पहले कैसे होगा, जब हम अपनी वास्तविक स्थिति समझेंगे। तो वास्तविक स्थिति बताना क्या है, दो प्रकार की स्थिति है, एक सच्ची वास्तविक स्थिति और एक अभी की वास्तविक स्थिति। सच्ची स्थिति क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, हम सब श्री कृष्ण के नित्य सनातन दास हैं। और अभी की वास्तविक स्थिति क्या है कि हम माया के इंद्रियों के मन के दास हैं। तो अभी की वास्तविक स्थिति भी पता हो, जो डिजीज्ड कंडीशन है, जो ये असंतुलित स्थिति है, और वास्तविक स्थिति का भी ज्ञान कराना कि वो तुम्हारी वास्तविक स्थिति है, ये इस्कॉन के पहले उद्देश्य के अंतर्गत निहित है। कितना परफेक्ट है, बता रहे हैं ये कर लो ये कर लो, वो क्यों करे उसे पता ही नहीं है। तो पहले हमारी स्थिति तो पता चले हम कहां फंसे हुए हैं, कितनी दयनीय अवस्था है। तो इसको प्रचार कैसे करना है, सुव्यवस्थित रूप में। एक इंस्टीट्यूशन है ये एक शिक्षा का केंद्र है, यहां कोई आश्रम नहीं है, जैसे कि वृंदावन प्रसिद्ध है आश्रमों के लिए। बहुधा वहां प्रचार कार्य पर इतना मिशनरी एक स्पिरिट नहीं होती है, वहां ठीक है कोई आए सेवा होती है, साधु सेवा होती है, भंडारे होते हैं खूब, वैष्णवों का सम्मान होता है, बहुत कुछ होता है, किंतु एक स्पिरिट लेकर के चलना, एक मिशन लेकर के चलना ये नहीं मिलता है। इसलिए इसको हम आश्रम नहीं कह सकते, एक इंस्टीट्यूट है पूरे विश्व के लिए। दूसरा उद्देश्य है तो इसलिए इंस्टीट्यूट में सुव्यवस्थित रूप से सिस्टमैटिकली स्टडी अध्ययन करके और कराना उनको अवेयरनेस, उनको जगाना और कृष्ण चेतना में, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना में पुनः स्थापित करना, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा है महान ग्रंथों जैसे भगवद गीता और श्रीमद भागवतम में प्रकाशित कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करना। तो कैसे करना, सुव्यवस्थित रूप से संघ के सभी सदस्यों को आपस में एक साथ आदि पुरुष कृष्ण के निकट लाना। उपनिषद उप समीप में लेकर के आना और बिठा देना, सेवा के लिए यहीं बैठो, माया की सेवा छोड़ो। इस प्रकार सभी सदस्यों और संपूर्ण मानवता में ये विचार विकसित करना कि प्रत्येक जीव भगवान कृष्ण का गुणात्मक अंश है, और एक रूप में तो एक है ही, दूसरे रूप में भी एक हो जाए जिससे अलग है। क्या इसका उद्देश्य भगवान के उद्देश्य से भिन्न है, इसकी बुद्धि अलग चल रही है। अब कृष्ण की इच्छा में अपनी इच्छा, उनके उद्देश्य में अपना उद्देश्य मिला देना। कैसे मिलाएंगे, भगवान की जो इच्छा है वही परंपरा क्रम से आ रही है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद जी उसी इच्छा को वहन करके चल रहे थे, उस इच्छा को श्री प्रभुपाद जी ने अपनी इच्छा बनाया, अपना जीवन बनाया, इस प्रकार से ये एक हो गए, तो इस प्रकार से निकट आ गए भगवान के। तो ऐसे ही हमें सिखाया इन्होंने ऐसा करके, और संपूर्ण मानवता में ये विचार विकसित करना कि प्रत्येक जीव भगवान कृष्ण का गुणात्मक अंश है। भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में प्रकाशित संकीर्तन आंदोलन यानी भगवान के पवित्र नाम के सामूहिक जप और कीर्तन को सिखाना और प्रोत्साहित करना। बाहर आप जाओगे तो एक बोर्ड में लगा हुआ है एक इन्फॉर्मेशन, संकीर्तन के लिए माइक और साउंड सिस्टम कोई देना चाहता हो तो दे सकता है। तो प्रचार हो रहा है, आप कीर्तन कीजिए, आपको सब व्यवस्था दी जाएगी सभी सदस्यों को। और सदस्यों और संपूर्ण मानव समाज के लिए श्री कृष्ण को समर्पित दिव्य लीला स्थलियों का निर्माण करना, इसमें इस्कॉन के सेंटर्स आ जाते हैं। भगवान की जैसे कि आप इस्कॉन इसमें पूना के पास जो बना है वहां बिल्कुल वृंदावन की अनुकृति, प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जाकर के सब विदेशों में जाकर के इस प्रकार वृंदावन को ही न्यू वृंदावन न्यू द्वारिका आदि बसा दिए। तो दिव्य लीला स्थलियों का निर्माण करना, सभी सदस्यों को सरलतम और अधिक सहज जीवन की शिक्षा देने के उद्देश्य से एक दूसरे के अधिक निकट लाना। सादा जीवन उच्च विचार, सारी समस्याएं इसीलिए हैं क्योंकि हम भौतिक दृष्टिकोण से हाई बनना चाहते हैं, और वास्तव में हम जितने भौतिक क्षेत्र में उन्नति करते हैं उतने आंतरिक अंतःकरण से उदास फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ये आज का समाज प्रमाण है, पूरे विश्व में अशांति है। सबसे अधिक सुविधा प्रभुपाद जी जब गए इस आंदोलन की स्थापना जहां हुई न्यूयॉर्क में, तो वहां पर प्रभुपाद जी जब गए तो कोई कमी नहीं है, आर्थिक विकास भरपूर है,
लेकिन कोई संतुष्ट नहीं है, हृदय सबका जल रहा है। उस जलते हुए हृदय पर त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, प्रभुपाद जी बरसात बन के बरसे। प्रभुपाद जी बादल हैं, कैसे, जैसे बादल जो है समुद्र का जल जो डायरेक्ट कोई पिए तो नहीं पी सकता, लेकिन वह जल बादल अवशोषित करके सुमिष्ट बना करके और उस स्थान से सुदूर कहीं जहां वह जल नहीं जा सकता, नहीं पहुंचा है, वहां ले जाकर बरसा देना। ऐसे ही प्रभुपाद जी श्री कृष्ण की भागवत भगवत गीता को, इस अमृत को, नेक्टर ऑफ भगवान की वाणी, भगवान की वाणी का अमृत, भगवान के चरित्रों का अमृत, तव कथामृतम, इस अमृत को लेकर के गए। और श्रुतियों में वेदों में बड़ा क्लिष्ट था, उस क्षार अंश को निकाल करके, क्लिष्ट अंश को हटा करके, सरल करके, आप देखेंगे कितनी सरल भाषा है प्रभुपाद जी की, इंग्लिश इतनी सरल है, बिल्कुल सिंपल वे में प्रभुपाद जी समझा देते हैं, तो बिल्कुल मीठी मीठी। और ले जाकर के टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से ये महामंत्र के रूप में ये कृष्ण का अमृत, कृष्ण नामामृत, कृष्ण कथामृत की बरसात की है। भागवत में परीक्षित महाराज सुखदेव जी से कहते हैं, महाराज न भूख है न प्यास है न नींद है, कोई भौतिक इच्छा बची ही नहीं है। क्यों भाई भूख प्यास नहीं लग रही, क्या मिल गया तुम्हें? बोले पिबंतम त्वन मुखाम भोज, आपके मुख कमल से एक अमृत झर रहा है, महाराज वही पी रहे हैं। वो क्या है? अच्युतम हरि कथा अमृतम, पिबंतम त्वन मुखाम भोज, च्युतम च्युत बहता हुआ हरि कथा अमृत का पान मैं कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी के समस्त शिष्य जो उनके साक्षात दर्शन किए, उनके मुख से उन्होंने श्रवण किया है, कितने आंसू भर भर के जब प्रभुपाद जी की मेमोरीज होती हैं, उनकी बात, उनकी यादें जब वर्णन करते हैं तो कितने भाव विभोर हो जाते हैं। वो अमृत उन्होंने पिया है और वास्तव में जीवन परिवर्तित हुआ है और आज पूरा विश्व परिवर्तित हो रहा है। तो ये उद्देश्य है एक दूसरे को निकट लाना इस प्रकार से। और ऐसा हुआ, संपूर्ण विश्व आज एक हुआ कि नहीं हुआ इस्कॉन के नाम से? इस्कॉन के अंतर्गत सब एक हो चुके हैं। जो इस्कॉन को नहीं समझा उसकी प्रॉब्लम अपनी है, लेकिन जिसने प्रभुपाद जी का मिशन समझा, जो शास्त्रों को समझा, बाहर से इस्कॉन इस्कॉन नहीं कर रहा है, उतरा है, थोड़ा उसने अध्ययन किया है, वो समझेगा कि वास्तव में प्रभुपाद जी ने जो किया वो किसी ने नहीं किया। और सातवां उद्देश्य है, उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए, जो पीछे हैं उद्देश्य, सामयिक पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों और अन्य रचनाओं को प्रकाशित और वितरित करना, यानी कृष्ण भावना का प्रचार करना। तो इन पुस्तकों में क्या है, तो इसके बारे में वर्णन है कि गोविंद दासी फाउंडेड सम ओल्ड इंडियन न्यूज़पेपर्स 1970s, अपने पुराने सामान को छत पर कहीं टांड पर रखा हुआ था, देख रही थी, एंड वन हैड एन आर्टिकल अबाउट श्रील प्रभुपाद रिटन बाय एन एस्ट्रोलॉजर, किसी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा, कि नोबडी कैन रीड दिस चार्ट, कुछ प्रभुपाद जी के इस चार्ट को, यानी ये प्रभुपाद जी का जो जन्म का जो क्या कहते हैं प्रभु जी, अरे हाँ जन्म, अरे जन्म पत्री लेकर के गए, हाँ कुंडलिन लेकर के गए, तो पूछते हैं कि किसी ज्योतिष से कि बताइए, तो नोबडी कैन रीड दिस चार्ट, भैया इसको तो कोई नहीं पढ़ सकता। इफ दे से दे कैन, दे कैन, अगर वो कहते हैं कि वो पढ़ सकते हैं तो दे आर सिंपली लाइंग, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा क्या है? बोले दिस पर्सनैलिटी कम्स एंड गोज एट हिज ओन स्वीट विल, ये किसी प्रकृति के बंधन में नहीं है, ये स्वयं आता है स्वयं जाता है, ऐसा व्यक्तित्व। ही इज नॉट बाउंड बाय एनीबॉडी और एनीथिंग, वो किसी के बंधन में नहीं है, द स्टार्स आर लाइंड अप परफेक्टली. जैसे भगवान जब आते हैं तो उनके स्टार्स, उनके जितने नक्षत्र हैं, अपने अपने स्थान पर सेट हो जाते हैं. ऐसे प्रभुपाद जी जब आए हैं तो उनका सब प्री डिफाइंड है, सब सेट है. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ कर्मा. प्रभुपाद किसी कर्म के बंधन में नहीं आए हैं. ही इज वर्किंग डायरेक्टली अंडर द विल ऑफ गॉड. वो साक्षात श्री कृष्ण की इच्छा के अधीन है. एंड व्हेन ही राइट्स, जब वो लिखते हैं तो उनके पेन और उनकी इंक नहीं चलती उसके अंदर. राइट्स, हिज पेन डज नॉट हैव इन इट इंक, हिज पेन हैज इन इट फायर. उसमें अग्नि है, कृष्ण प्रेम की, कृष्ण भावना की अग्नि भरी हुई है उनके पेन में. और विच विल बर्न द इग्नोरेंस ऑफ द होल वर्ल्ड, जो कि सारी मानवता की, सारे जीवों की, जो भी उनकी पुस्तकों को पढ़ेगा, उनके प्रवचनों को सुनेगा, रिकॉर्डेड है आज भी, दर्शन करेगा, उसके हृदय का अज्ञान अंधकार जल जाएगा बिल्कुल. श्री प्रभुपाद की. तो हम क्या समझ रहे हैं, प्रभुपाद जी की जो आने की अवधारणा है ये बहुत पूर्व से चालित है, इसकी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही है. जैसे कोई राजनीतिक अभियान होता है, कोई संगठन होता है, तो उसका एक नेता होता है सामने, तभी तो वो चलता है. जैसे भारतीय जनता पार्टी चलती है तो मोदी जी को आगे करके चलती है. ऐसी हर एक पार्टी में कोई कोई होता है नेता. तो हमारे इस आंदोलन में कौन है, श्री प्रभुपाद. श्री प्रभुपाद ही इसके नेतृत्व करने वाले हैं और आज भी वो नेतृत्व कर रहे हैं. तो हमें सबको ये समझाना है. हिज होलीनेस लोकनाथ महाराज जी ने बड़ी प्यारी एक पुस्तक लिखी, अपनी ऑफरिंग्स दी हैं श्री प्रभुपाद को पूरी बुक में. नाम है माय प्रभुपाद, बट इन इंग्लिश, इन हिंदी मेरे प्रभुपाद. इसमें कितना अपनत्व है, कितना प्रेम है. महाराज बिल्कुल बालक की भांति प्रभुपाद से अपने दोषों का भी वर्णन कर रहे हैं. हम थोड़ा पढ़ रहे थे, इसमें बड़ी प्यारी बात प्रभुपाद जी के लिए कह रहे हैं. मेरा मंत्र उपासक, कहते हैं महाराज की, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और माँ गंगा के बीच द्वारिका में हुए एक संवाद का उल्लेख मिलता है. सभी पवित्र नदियों का पक्ष रखते हुए सबकी लीडर बन के गंगा जी आगे आई और भगवान के समक्ष आकर के चिंता करती हैं कि हे प्रभु, कलिकाल तो है, देखो आरंभ होने को है और भगवान इस जगत को छोड़कर जाने वाले हैं गोलोक वृंदावन. तो कहती हैं, हे भगवान, हम देख रहे हैं कि आपकी लीलाएं अब विश्रांति की ओर है इस जगत में और संसार के लोग अधिक से अधिक भौतिकतावादी हो रहे हैं. जैसे जैसे आप जाएंगे इधर से कलयुग आएगा. हम अभी तक आपकी अनंत करुणा की पात्र रही हैं समस्त नदियां, किंतु अब जबकि आप चले जाएंगे और कलयुग के सभी पापी लोग आएंगे और कहेंगे हर हर गंगे, उधर से गड़बड़ करके आएंगे, इधर कहेंगे हर हर गंगे, हैं पाप नाश कर दो हमारा. तो पाप तो हम नाश कर देंगे क्योंकि भगीरथ से कहा है, सबसे कहा है भक्तों का. लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमारे पाप कहाँ जाएंगे, वो तो हमें व्याकुल कर देंगे. सारे पापी ही पापी आएंगे और पाप करके फिर पाप करेंगे, धो करके फिर पाप करेंगे, बड़ी समस्या है. तो भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे, अरे देवी आप धैर्य रखिए, चिंता ना कीजिए, व्यवस्था पहले से है. इसी कलिकाल में 5000 वर्ष के बाद मेरा एक मंत्र उपासक आएगा, हरे कृष्ण महामंत्र की उपासना करने वाला है इस संसार में आएगा, जो मेरे पवित्र नाम जब का प्रचार प्रसार करेगा. न केवल भारतवर्ष में करेगा, अभितु विश्व में भी, सारे विश्व में लोग क्या करेंगे, उदास होकर के, नींद में नहीं, उल्लास के साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो भक्त उल्लास पूर्वक कृष्ण नाम का कीर्तन करेंगे, जप करेंगे. इससे क्या होगा, इसके फलस्वरूप विश्व के समस्त लोग एक वर्ण हो जाएंगे, अर्थात सब हरि भक्त हो जाएंगे, वैष्णव हो जाएंगे, हरि भक्त हो जाएंगे, विष्णु के भक्त हो जाएंगे. कितने पावन होते हैं भगवान के भक्त कि उनके संपर्क में आने वाले भी दर्शने पवित्र करो ए तो मार गुण, दर्शन से भी पवित्र हो जाते हैं, तो स्पर्श सेवा और श्रवण करने को मिल जाए तो बात ही क्या है। ऐसे भक्त आएंगे तो देखो देवी, तब जब ये सारे भक्त कभी किसी प्रसंग में, जब प्रयागराज का कुंभ होगा अथवा हरिद्वार में कुंभ होगा, नासिक में होगा, कहीं कहीं भक्त जाएंगे प्रचार के लिए, जब गंगा जी पड़ेंगे, यमुना जी पड़ेंगे, कोई नदी पड़ेगी और उसमें स्नान करेंगे, तो क्या बोलेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और सारे पाप आपके खींच लेंगे, शुद्ध कर देंगे आपको भी। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेन गदाभृता, अपने हृदय में श्री कृष्ण को, श्री राधा श्याम सुंदर को विराजमान करके चलते हैं और जहां जाते हैं उसको भी धाम पवित्र कर देते हैं, तीर्थ बना देते हैं। तो इस प्रकार को तीर्थ को तीर्थत्व देने वाले ऐसे वैष्णव आएंगे, तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर देंगे। सारे विश्व में ये हरे कृष्ण दस जप आंदोलन 10,000 वर्षों तक चलेगा। ये मंत्र उपासक कौन है? ऐसा किसने किया जो संपूर्ण विश्व में ऐसी क्रांति करे हरि नाम की? एक स्वर से यदि ईमानदारी से पूछा जाए तो कौन है? श्रील प्रभुपाद। कोई दूसरा नाम टिकता ही नहीं है हिस्ट्री में। भगवान ने स्वयं प्रभुपाद को चुना है, ऐसे ही कोई नहीं कर सकता है। तो प्रभुपाद जी के बारे में श्री चैतन्य मंगल नामक एक दूसरी पुस्तक में भी वर्णित है कि आध्यात्मिक जगत में विचरण करते हुए श्री नारद मुनि एक बार भगवान श्री गौरांग से मिले। भगवान ने उनसे कहा कि उनका उद्देश्य, उनका विजन क्या है, ध्येय है कली काल की पाप पूर्ण गतिविधियों का नाश करना, क्योंकि असुरों को मारेंगे तो फिर तो खत्म कहानी, उनकी आसुरता का नाश करना। उन्होंने कहा, मैं नाम संकीर्तन के शक्तिशाली अस्त्र द्वारा सभी के हृदय की गहराइयों में जो पाप हैं, आसुरी वृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों का नाश कर दूंगा। यहां तक कि पापी लोग जो भारतवर्ष को, पुण्य भूमि, धर्म भूमि को छोड़कर और विदेश चले जाएंगे हैं, उनको, उनके पास भी जा करके मैं भाग जाएंगे, फिर भी उन्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी। मैं अपनी कैसे कृपा प्राप्त करेंगे प्रभु? वो बोले, मैं अपना सेनापति भक्त उनके उद्धार के लिए भेजूंगा। ये साक्षात चैतन्य मंगल। तो सेनापति भक्त का मतलब ऐसे भक्त जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन सेना का नेतृत्व करने वाला है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे भक्त जिसे भगवान चैतन्य महाप्रभु से कृष्ण भावनामृत का प्रसार समस्त विश्व में कर पाने की शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि कली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, लेकिन कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। तो अंतिम स्वर्णिम युगाचार्य को पढ़ के विश्राम। तो एक आत्म तत्व प्रभु हैं प्रभुपाद डिसिपल, उन्होंने विभिन्न शास्त्रों पर शोध किया और उसके बाद श्रील प्रभुपाद को स्वर्णिम युगाचार्य जो है असाधारण रूप से प्रतिपादित किया। और क्या कहा कि हजारों वर्ष पहले ये प्लानिंग चल चुकी थी, हो चुकी थी, तैयारियां हो गई थी। क्या तैयारियां की गई थी? प्रभुपाद जी के आगमन की, उनको भेजने की, न केवल भगवान चैतन्य महाप्रभु अपितु अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी इस आशय से विभिन्न प्रकार से बहुत योगदान दिए हैं। कैसे समझे इस बात को कि सब ने इस मिशन में सहायता की है? तो एक धनुष का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं एक धनुष, धनुष जो होता है साइड में से मुड़ा होता है, बीच में से भी उभार होता है ना, तो 1, 2, 3, 4 उभार होते हैं, फोल्ड होते हैं चार जगह से। तो ये चार धनुष के कोने जो है ये चार वैष्णव संप्रदाय है, ब्रह्म रुद्र श्री ऐसे। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? महाप्रभु है उसकी डोरी, श्री चैतन्य महाप्रभु धनुष की डोरी है। अब डोरी नहीं होगा तो फिर बाण कहां से चलेगा, क्या करेगा? और वो कहते हैं कि बिना डोरी के धनुष बेकार है। तो चैतन्य महाप्रभु के अवतरण जब हुआ इस धराधाम पर आज से 500 कुछ वर्ष पूर्व, तो वो धनुष की डोरी भी लग गई। धनुष तो पहले था लेकिन अब डोरी चढ़ा दी गई। अब चढ़ी हुई डोरी जब हो गई तैयार, तो उसके बाद एक बाण चाहिए चढ़ाने के लिए। तो बाण क्या है? तो बाण की आवश्यकता है जिससे नशाना सटीक दिशा में छोड़ा जाए, यानी सबके हृदय में जो वो दुष्प्रवृत्ति या आसुरी वृत्तियां उनको नाश करने के लिए सटीक। तो उसको बाण का डेफिनेशन, बाण की थोड़ी परिकल्पना बताते हैं। बाण के अंतिम छोर यानी बैक साइड में पीछे क्या होते हैं, पंख लगे होते हैं। तो वो क्या है, जो बाण को सही दिशा प्रदान करते हैं, बिल्कुल विजन डायरेक्ट देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। तो वो क्या है, छह पंख, ये षड गोस्वामी। षड गोस्वामियों ने ये मूवमेंट को दिशा दी है, ये दिशा दी है। हमारे गोस्वामियों के ग्रंथ ना होते तो आज ये इस्कॉन की स्थापना इतनी सशक्त रूप से नहीं हो पाती। तो महाप्रभु के द्वारा ये आगे प्रसारित किया गया। और आगे कहते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित 64 मठ जो हैं, इस बाण की जो बीच की मिडिल डंडी है, तो ये डंडी का काम करते हैं। और अंतिम चीज है, अब जो बाण का अंतिम भाग है, जो टारगेट पर जाकर लगता है लोहे का फल, वो नुकीले धारधार सिरा। तो प्रभु कहते हैं आत्म तत्व प्रभु की ये नुकीला और धारदार सिरा कौन है, यही है हमारे अपने श्रील प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद की। तो बाण का यही भाग जो है ना दिखाई देता है लगता हुआ, बट इसके पीछे पूरी परंपरा है, पूरी सृष्टि है, पूरे भगवान की व्यवस्था है। तो दिख रहे हैं प्रभुपाद, लेकिन है उनमें सारी परंपरा, भगवान साक्षात। तो यही भाग चोट पहुंचाता है। इस दृष्टांत में कहां कहां लगा, प्रत्येक गांव प्रत्येक नगर इस बाण का लक्ष्य है। पृथ्वी ते आछे जोतो नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। तो आज के दिन श्री प्रभुपाद जी ने स्कॉन की स्थापना की, अर्थात वो बाण लगा और वो लग अब भी रहा है और वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसी कामना के साथ प्रभुपाद जी की कृपा बढ़ती रहे। ऐसे ही हम जैसे कितने पतित जीव हैं जो प्रभुपाद की कृपा से आज इस आनंद के समुद्र में गोता लगा रहे हैं। इतने नियम से रोज भागवत पढ़ना, कितने सुंदर भगवान के दर्शन, कितनी सेवाएं, हरि नाम, भक्तों का समूह इतना विशाल, कितना दुर्लभ था इस कलिकाल में। श्री प्रभुपाद जी के हम ऋणी हैं, ऋणी रहेंगे और ऋणी ही रहना चाहते हैं। तो यही अंतिम वचन था। तो धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। तो कोई प्रश्न करना